ओम शांति। आज की रात्रि क्लास में हम आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 1972 से ईश्वरीय सेवाओं में आपने अपना जीवन पूर्ण रीति से समर्पित किया है और वर्तमान समय बाबा के जो देश विदेश में मुरली जाती है उस मुरली में विशेष आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मुरली के प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन और दादी जी का पत्र पुष्प, पत्र पुष्प में अव्यक्त इशारे, ये सब आप ही हम सबको लिख करके भेजते हैं और बाबा के सभी बच्चे उनको इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो यही कहते हैं कि दिन भर का भोजन हमें वरदान स्लोगन से मिल जाता है। इतनी दुआएं प्राप्त करने वाले आदरणीय राजू भाई जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वाध्याय आपकी विशेष रुचि है, देश विदेश में अनेक स्थानों पर अमेरिका, लंदन आदि में भी जाकर के आपने अपने योग के गहरे अनुभव सुनाकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। इसलिए आपके लिए मैं दो शब्द कहूंगी। साकार में शिव की मुरली ब्रह्मा के मुख से बहुतों ने सुनी नहीं। साकार में ब्रह्मा के मुख से बहुतों ने शिव की मुरली सुनी नहीं। अव्यक्त वाणियां भी आरंभ की बहुतों को सुनने को मिली नहीं, किंतु आपकी अथक सेवा से सभी को आंखों में एक नया नूर मिल जाता है, एक नया सुर मिल जाता है। नहीं कोई ऐसा जिसने पढ़ करके श्रीमत की धुन गुनी नहीं, श्रीमत की धुन गुनी नहीं। मुरली का सार हो या स्लोगन गीत सुरजीत कर देते हैं। धारणा वरदान और स्लोगन सारे दिन की नींव भर देते हैं। हे मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर राजू भाई, हे दादियों के पत्र पुष्प के माली, आपकी लेखनी से मूर्त हुए शब्द दूर बैठे भी मधुबन सजीव कर देते हैं। ऐसे बाबा के विशेष सेवाधारी, अनेकों की दुआएं प्राप्त करने वाले आदरणीय राजू भाई जी से हम क्लास करेंगे। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन, ईश्वरीय मर्यादाएं।
ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हैं। जो ब्राह्मण आत्माएं शुरू से, आदि से लेकर अब तक मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, उन्हें इस मार्ग में कभी भी मेहनत का, मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसे लगता है एक बहुत सहज योगी जीवन, एक बाबा के प्यार में समाने वाली, बाबा के साथ साथ उड़ाने वाली, बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। अभी दादी का नशा आप सभी देख रहे होंगे क्लास में। कोई पूछता है आप कहाँ रहती हो, तो दादी ने क्या जवाब दिया, मैं सदा बेगमपुर में रहती हूँ। कोई भी गम नहीं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं, क्योंकि बाबा की बताई हुई श्रीमत और मर्यादाओं के अंदर चल रहे हैं। मर्यादाएं हम सबकी बहुत अच्छी सुरक्षा करती हैं। ब्राह्मण आत्माओं के लिए जब शुरू शुरू में हम सब बाबा के बच्चे बने तो सहज योगी जीवन के चार पिलर्स हमें बताए गए। कोर्स के अंदर 7 दिन के लेसन में योगी जीवन की 4 बातें सभी को हम सुनाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। अगर इन चारों का किसी ने संपूर्ण रीति से पालन किया है, ये फाउंडेशन अगर किसी का पक्का है तो उसकी जीवन बहुत सहज योगी है। योग में मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं योग में मेहनत का अनुभव कर रही हैं, कहती हम नियमों का तो पालन कर रहे हैं लेकिन मेरा योग नहीं लगता, तो जरूर हम सबको चेक करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई मर्यादा का संकल्प में, बोल में, कर्म में कहीं न कहीं उल्लंघन जरूर हो रहा है। कल मैं डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अधिकतर परिवार वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हैं लेकिन अभी तक भी अन्न की शुद्धता नहीं है। और हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। मन की चंचलता अगर नहीं स्थिर होती तो जरूर अन्न की अशुद्धता है। बाबा हम सबको कहते हैं योगियों के हाथ का बना हुआ भोग लगाया हुआ बहुत सात्विक शुद्ध अन्न खाना। लेकिन चलते चलते इस नियम में कई ब्राह्मण आत्माएं कमजोर पड़ जाती हैं, कहती हैं क्या करें, टकराव की स्थिति बन जाती है, लोग बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या हम अछूत हैं, हमारे हाथ का आप नहीं खाते, आज तक तो आप खाते थे अभी क्या हो गया। तो कई बार ब्राह्मण आत्माएं इसमें कंप्रोमाइज कर लेती हैं, समझती हैं कोई हर्जा तो नहीं है, कोई एक दिन में खाने से कोई हमारा मन इतना कमजोर तो नहीं है जो अशुद्ध हो जाएगा। और चलते चलते नियमों में जब लूज होती हैं तो एक नियम लूज होने से दूसरे सब पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने पिलर्स को चेक करना चाहिए। अगर हम पक्के रहते हैं, मजबूत रहते हैं तो उसकी छाप धीरे धीरे लोगों पर पड़ती है, ये लोग अपने नियम में बहुत पक्के हैं। और योगी जीवन के लिए नियम बहुत आवश्यक हैं। सत्संग के नाम पर बाबा ने हमारे लिए केंद्र खोले, सेवा स्थान बनाए, लेकिन कई आत्माएं सेवा स्थान पर न जा करके सोचती हैं कि हम तो अपने घर में ही मुरली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आजकल तो बड़े अच्छे साधन हैं साइंस के, पीस ऑफ माइंड में मुरली आती है या हमारे मोबाइल में आ जाती है, किसी न किसी रूप में मुरली तो हम सुनते ही हैं। लेकिन जो सत्संग का महत्व है, जब तक हम आपस में ब्राह्मण आत्माएं संगठित होकर के संगठन में मिलती जुलती नहीं, एक दूसरे के अनुभवों की लेन देन नहीं करती तब तक उस सत्संग का संपूर्ण फायदा नहीं मिलता, उसका रंग नहीं लगता। इसलिए चारों नियम बाबा ने जो आरंभ के दिनों में ही हम सबको सहज योगी जीवन के लिए बताए, उन नियमों का संपूर्ण रीति से पालन करना, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में मैं आपको चार पिलर्स और बताता हूं। अगर मौजों का अनुभव करना है, मेहनत से मुक्त होना है, कभी भी उलझन ना आए, कभी भी कोई विघ्न रुकावट न डाले, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं हम उसको सहज पार कर लें, बड़े से बड़ी बात भी ऐसे अनुभव हो जैसे मक्खन से बाल निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए चार पिलर्स और उसके आधार पर बहुत सी मर्यादाएं मैं आपको थोड़े से समय में सुनाना चाहता हूं। जरूर सभी ब्राह्मण आत्माएं, लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में रहना, उसकी अति आवश्यकता है। तो पहले चार नियमों पर ध्यान दें। पहली बात है, हमारे जीवन में रूहानियत आती जाए, बाहिमुक्ता, जिसके अनेक प्रकार के रस हैं, देखना, सुनना, बोलना, घूमना, फिरना, ये सब बाहिमुक्ता के रस कहलाते हैं। लेकिन जिन आत्माओं को रूहानियत पर ध्यान है, उनके चेहरे से भी रूहानियत दिखाई देती है, उनके बोल से भी रूहानियत का अनुभव होता है, आत्मिक स्थिति एक नेचुरल बन जाए, बाहिमुक्ता समाप्त हो जाए। हर ब्राह्मण आत्मा रोग से मुक्त होकर के रूहानी रुहाब में रहना सीख जाए। बड़े अच्छे शब्द हैं उर्दू के, रोब और रुहाब। आजकल की दुनिया में कहते हैं रोब के बिना काम नहीं चलता, अगर थोड़ा सा कोई रोबदार नहीं है तो उसको लोग बुद्धू भोला समझते हैं, इसलिए रोब से काम लेना चाहते हैं। और बाबा ने अपने बच्चों को रुहाब में रहना सिखाया है, रुहाब में रूहानियत आ जाती है, पर्सनालिटी है जिसके अंदर बोल पर भी कंट्रोल है, दृष्टि पर भी कंट्रोल है, मन पर भी कंट्रोल है, एक बहुत सुंदर ब्राह्मण जीवन की प्रगति का पिल्लर रूहानियत है। और जिसने इस रूहानियत पर ध्यान दिया है उसके आगे कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातों का वार नहीं होता, उनसे वो मुक्त रहते हैं। और दूसरा है निस्वार्थ स्नेह, सच्चा प्यार। उस प्यार के अंदर आत्मा किसी के अवगुण, किसी के दोष नोट नहीं करती, सबके साथ समान रूप में प्यार होता है, कोई से अधिक प्यार हो जाए, कोई से कम हो, कोई बहुत अच्छा लगे, कोई अच्छा न लगे, उसको निस्वार्थ सच्चा प्यार नहीं कहा जाता। अगर ब्राह्मण आत्माएं इस निस्वार्थ प्यार को, सच्चे प्यार को, आत्मिक प्यार को पहचान जाएं, तो कभी भी आपसी टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती। कोई भी बात बड़ी भी हो जाए संगठन में, सॉरी कह करके एक दूसरे से फिर से उसी स्नेह से व्यवहार शुरू हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के अंदर इस न्यारे प्यारे अलौकिक प्यार का, निस्वार्थ प्यार का, आत्मिक प्यार का अनुभव करें भी और कराएं भी। कोई भी आत्मा अगर इस प्यार से वंचित रह गई तो वो अपने आप को बहुत नीरस उदास अनुभव करती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उस रूहानियत भरे आत्मिक प्यार का, स्नेह का एक दूसरे को अनुभव कराएं। बाबा ने हम सबको प्यार की रस्सी में बांधा है और उसी प्यार की पालना में हम सब इतना आगे बढ़े हैं। कोई अनुभव मेरे से पूछता है तो मैं ये कहता हूँ, ज्ञान सागर का ज्ञान तो पीछे समझ में आया बहुत समय के बाद, लेकिन बचपन से जो परिवार का प्यार मिला, दादियों का स्नेह मिला, उसी प्यार और स्नेह के बंधन में बंध करके हम सब आगे बढ़े हैं। अधिकतर ब्राह्मण आत्माएं प्यार के बंधन में बंधी हैं और आज तक भी वो रूहानी प्यार कितनी दूर दूर की आत्माओं को बाबा से सन्मुख मिलाने के लिए खींच करके ले आता है। देखेंगे आपको बाबा कितना प्यार कर रहा है इस समय अव्यक्त रूप में। बचपन में हम जब शुरू शुरू में आए, कुछ पता नहीं था ज्ञान क्या है, बाबा क्या है, लेकिन एक बहनों का, दादियों का, भाई बहनों का जो संगठन था, उस संगठन के बीच में प्यार इतना मिला, हर चीज में, खाने में, पीने में, पहनने में, सेवा में, हर चीज में, कोई तकलीफ हुई, कोई बीमार हुआ, कोई कुछ कारण बना, एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना, उनकी दिल लेकर को हल्का करना, एक बहुत रूहानी प्यार मिल गया हम लोगों को। और उस प्यार के अंदर कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं थी। आजकल के प्यार में बाबा कई बार कहता, प्यार नहीं है, मार है, या तो वासनाएं हैं प्यार के नाम पर, विकार काम विकार सता रहा है, या तो मोह में आत्मा फंस रही है। एक सताता है और दूसरा फंसाता है प्यार। काम वाला सताता है व्यक्ति को, परेशान करता है, और मोह वाला फंसा देता है। लेकिन ये प्यार फंसाता भी नहीं है और सताता भी नहीं है। ये प्यार अपनत्व की, अपनेपन की अनुभूति करा देता है। इसलिए एक एक ब्राह्मण आत्मा को इस सच्चे प्यार का अनुभव करना है। कहते योग नहीं लगता, योग कैसे लगाएं? मैं कहता हूं आपने प्यार का अनुभव किया है? जो इतनी बाबा ने हम सबको अखुट प्राप्तियां कराई हैं, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, इतना ऊंचा अविनाशी ज्ञान दिया है, उस प्राप्तियों की स्मृति से प्यार उमड़ता है और वो प्यार स्वरूप आत्माओं के लिए योग बड़ी सहज बात है, योग मुश्किल नहीं लगता। इसलिए दूसरे पिल्लर पर ध्यान देना कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। रूहानियत भरा आत्मिक स्नेह, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, कोई स्वार्थ रख करके नहीं, ये मुझे मदद करेगा तो मैं करूंगा, ये प्यार नहीं कहलाता। लेकिन हम सब के हैं, सब हमारे हैं, समय पर जिसको जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है उस प्रकार का सहयोग दे करके उसको अपनत्व की अनुभूति करा देना, फंसा नहीं लेना अपने में, लेकिन उसको अपनी फीलिंग दे करके कि हमारा भी कोई है इस परिवार के अंदर, ईश्वरीय परिवार के अंदर, हम सब ब्राह्मण आत्माओं का इतना सच्चा रूहानियत भरा आत्मिक प्यार होना आवश्यक है। ये दूसरा पिलर है। और तीसरा है अंदर और बाहर की सच्चाई और सफाई, जिसको स्वच्छता कहें। जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। अगर यहां पर आप आए हैं 20-25 हजार के संगठन के बीच में, आपको स्वच्छ बैठने का स्थान न हो, स्वच्छ भंडारा न हो, खिलाने वालों में स्वच्छता न हो, तो मैं समझता हूँ ये स्थान आपको आकर्षित नहीं करेगा। आकर्षण का एक मूल कारण है यहाँ की स्वच्छता, सफाई। एक बार एक ग्रुप आया था, मैं ऐसे ही अटेंड कर रहा था, पांडव भवन दिखा रहा था, तो उसने सफाई को देख करके, वहाँ की स्वच्छता को देख करके मेरे से कहता है कि आप लोगों ने इन झाड़ों को भी ऑर्डर दिया है क्या कि यहाँ पर पत्ते नहीं गिराना। हमने कहा कि इनको हमने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन अगर गिरते हैं तो हम समझते हैं ये उठाना हमारा फर्ज है, सफाई कर लेते हैं, किसी के लिए वेट नहीं करते। मजदूर आएगा, वो आएगा, सफाई करेगा, हमारा भी घर है, हम सब का भी फर्ज है, कर्तव्य है। अगर टेबल गंदा है, कोई साफ करने वाला नहीं है, तो अगर हमने कोई रुमाल या तौलिया उठा करके टेबल साफ कर दिया तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है अपने स्थान की स्वच्छता रखना। और अगर स्वच्छता है, आप भी अपने लौकिक घरों में रहते हैं, प्रवृत्ति के अंदर रहते हैं, घर आश्रम अनुभव हो, घर गृहस्थी नहीं, गृहस्थी माना ही जहां स्वच्छता नहीं है। कभी कभी जब किसी गृहस्थी के घर में जाने का अवसर मिलता है, होते बाबा के बच्चे हैं और बहनें सोचती हैं कि सेंटर छोटा है, ये भाई आए हैं, इनको हम फलाने के, बहुत अच्छा वीआईपी का घर है, उसके घर में सोने के लिए जगह दिला दें, और वहां जाते ऐसा लगता है कहां आ गए, किसी के घर में आ गए। इतनी अस्वच्छता दिखाई देती है, गंदगी, भले कितने भी टिप टॉप घर हो, लेकिन वहां की स्वच्छता किस प्रकार की होती आप सब अनुभवी हैं। लेकिन बाबा के ब्राह्मण बच्चों के घर, जहां वो प्रवृत्ति संपूर्ण परिवार जिनका ज्ञान में है, कम से कम वो घर तो आश्रम होने चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की मैल गंदगी कहीं दिखाई न दे। कहते हैं मकड़ी को भी आर्डर है कि यहाँ जाला नहीं बुलना, मकड़ी भी जाला नहीं लगा सकती है। अगर किसी सेंटर पर हम जाएं और मकड़ी के जाले चारों तरफ से लगे हों, वहां पर क्या वातावरण होगा, क्या वाइब्रेशन होंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको अंदर और बाहर की स्वच्छता सिखाई है। ऐसे स्थान पर बैठना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सब, वस्त्रों की स्वच्छता है, तन की स्वच्छता है, मन की स्वच्छता है, अध्ययन की स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है वहां ही सहज योग है। स्वच्छता की बात पर एक दो बात आपको यहाँ सुनाऊंगा। आप सबको शायद पता हो, यहाँ पर कुछ समय पहले दूध डेयरी की दूध देने वाली माताएं जो दूध डेयरी के अंदर दूध मंडली से दूध भेजती, उनके यहाँ पर शिविर रखे गए। उनके डायरेक्टर्स मैनेजर्स ने विशेष रिक्वेस्ट की कि माताओं को, गांव की माताओं को आप स्वच्छ दूध उत्पादन पर ट्रेनिंग दो। तो यहाँ पर 3-3 हजार ग्रुप, 3-3 हजार माताओं के ग्रुप आते थे डेयरी की तरफ से। उनको कोई दूसरी शिक्षाएं हम लोगों ने नहीं दिखाई दी, लेकिन केवल वो भंडारा देखते थे, आश्रम देखते थे, इतनी सफाई देखते थे और देख करके ही सीख जाते थे। कहते थे डेयरी वाले कि पहले जो दूध आता था उसमें मक्खियां, रोटी के टुकड़े, बहुत सारी गंदी बातें जो दूध छानने के बाद मिलती थी, यहाँ आने के बाद उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ गया। आपने क्या इनको ट्रेनिंग दी। देखने से बहुत जल्दी माताएं सीख जाती थी, कितनी सफाई यहाँ पर है। और उनको जब कहा जाता था कि आपकी डेयरी से जो दूध आता है वो भगवान के लिए यहाँ भोग बनता है, और वो भोग भगवान और इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं खाती हैं, तो आप कितनी जवाबदार आत्माएं हो। जिस दूध से भोग बनता है, देवताओं को, भगवान को खिलाया जाता, उसमें कितनी स्वच्छता होनी चाहिए। ये बात उनके दिल दिमाग में इतनी बैठ जाती जो डेयरी का दूध की क्वालिटी ही बढ़ा दी उन्होंने। तो बाबा के घर में स्वच्छता देख करके कई आत्माएं बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा लेकर के जाती हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ले आती हैं। विचारों की स्वच्छता से भी, कहते जब इनको पहले कोई भी इनसे बात करता था तो हमेशा गाली में ही बात करते थे, और अभी जब इनको कोई फोन करता है तो पहले ओम शांति कहते हैं। इतना तो सीख गए हैं। ये विचारों की स्वच्छता का प्रतीक है कि हमारे विचार स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, तो अपने आप उनके अंदर चौथा पिलर स्वतः आ जाता है, और वो है दिव्यता। दिव्यता आ जाती हर कर्म के अंदर, अलौकिकता है, दिव्यता है, नेचुरल दिखाई देता है, इसके अंदर सब दैवी गुण हैं। बात कहने का तरीका भी आ जाता है, बोलचाल भी बड़ा अच्छा हो जाता है, हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, सब चिन्ह चेहरे से झलकने लगते, उसको कहते हैं इसके अंदर दिव्यता है। तो ये चार पिलर्स अगर इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के अंदर ऐड कर दिए जाएं, तो मैं समझता हूँ ये जीवन बड़ा सहज सरल जीवन है, कोई भी मेहनत नहीं। लेकिन इन्हीं चार पिलर्स को मजबूत करने के लिए मैं आपके आगे 10 मूल धारणाएं बताना चाहता हूँ, जो मर्यादाओं के रूप में हम सबको दृढ़ता के साथ पालन करनी चाहिए। क्योंकि आप हम सभी ऐसे त्योहार पर आए हैं जो शिव जयंती महापर्व पर बाबा का जन्मदिन हम सब मनाएंगे, और ड्रामानुसार कल शिवरात्रि का दिन है। पहले बाबा शिवरात्रि के एक दिन पहले आते थे, लेकिन इस बार सारे भारत के अंदर शिवरात्रि का त्योहार कल ही मनाया जा रहा है, और कल ही बाबा हमारी सभा में आएंगे। तो ऐसे शुभ दिन पर शिव बाबा पर कुछ बातों की बलि चढ़ानी चाहिए। बलि चढ़ाते हैं ना शिव बाबा पर, और हम लोग जब झंडा लहराते हैं तो कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, संकल्प करते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें आपके ध्यान पर दे रहे हैं, अगर कमी है तो संकल्प लेकर के उसको परिवर्तन करना है। दृढ़ता के साथ संकल्प करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात है, हमेशा हम सब की एक आदत बन जाए शुभ चिंतन करने की। अशुभ बात भी दिखाई दे उसको शुभ बात में परिवर्तन कर दी जाए। हो सकता है ऐसा? संभव है? बड़ी बात है। हमारा चिंतन अशुभ न हो, क्योंकि चिंतन बीज है बोल और कर्म का। अगर चिंतन हमारा शुभ है, अच्छे से अच्छा है, तो अशुभ बात भी कोई हो जाए उसको भी हम परिवर्तन करके शुभ बना सकते हैं। हमारे अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। तो शुभ चिंतन की कला सीख लें, कुछ भी हो, कैसी भी बात हो जाए, उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें कुछ भलाई है, मुझे शुभ सोचना है, अशुभ नहीं। अगर हरेक ब्राह्मण आत्माएं सिर्फ पॉजिटिव सोचना सीख जाएं, नेगेटिव देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता, ऐसा होता, हम अशुभ चिंतन का वायुमंडल न बना दें। शुभ सोचें और शुभ संकल्प का वातावरण बनाएं, एक बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत अच्छा घेराव है। अगर एक एक ब्राह्मण आत्मा शुभ सोचना सीख जाए तो उसका ओरा, उसका आभा मंडल इतना शुद्ध और पवित्र हो जाएगा जो कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी अशुद्ध आत्माएं उन पर अटैक नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा आभा मंडल है और हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास शुभ चिंतन का बहुत बड़ा खजाना है। बाबा की इतनी मुरलियां हम सबको सुनने को मिलती हैं, इतना अध्ययन करने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छा साहित्य है, क्लासेज हैं। अगर हम उसको अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, हम शुभ चिंतन से भरपूर रहेंगे और अशुभ बातें आएंगी तो अपने आप चेंज हो जाएगी। दूसरी एक बात बहुत ध्यान देने की है कि इस अंतिम जीवन के अंदर इच्छाओं का विस्तार न हो। अगर इच्छाओं का विस्तार है तो कहते हैं जहां बहुत इच्छाएं हैं वहां अनेक समस्याएं हैं। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा ने अपने बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर रहने की शिक्षा दी है। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। ऐसा नहीं है कल का भरोसा नहीं है और सामान है 100 साल का। कल क्या होगा पता नहीं है और सामान इतना इकट्ठा कर लिया तो उसी में बुद्धि लटक जाए, उसी में फंस जाए, जब शरीर छूटे तो वहीं आत्मा भटकती रहे, ऐसा न हो। इसलिए इच्छाएं सीमित हों, जो आवश्यकताएं हैं बाबा अपने आप पूरी कर देगा। इच्छाओं का विस्तार हमेशा ही दुखी करता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक पूरी हो जाती है दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जितना बाबा ने दिया है उतना बहुत कुछ दिया है। सिर्फ अपनी प्राप्तियों को स्मृति में ला करके जितना बाबा ने इतना सम्मान दिया है, सम्मान दिया है, इतनी चीजें दी हैं, सब साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, फिर हम किसी से भेंट करके अपने आप को कम महसूस करें और इच्छा रखें कि मेरे पास भी ये हो। इसलिए ये मर्यादा समझ करके इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना। तीसरी एक बात है जिस पर बाबा विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, अव्यभिचारी याद। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। कोई भी आत्माएं कितनी भी सहयोगी हो, कितनी भी प्रकार के क्वालिटी वाली हो, विशेष हो, लेकिन मुझ आत्मा को अपने प्रभाव में न ले आए। केवल एक बाबा का प्रभाव और एक की याद बनी रहे निरंतर, ये अभिविचारी याद आत्मा को बहुत बड़ा बल देती है। और चौथी बात है, हमेशा बाबा का बच्चों पर ध्यान जाता है, संग की परहेज रखो। जो ज्ञान के विषय में, परिवार के विषय में, बाबा के विषय में कोई भी अपनी मत की बात सुना दें, अपना प्रभाव डालना चाहें, ऐसे संग से अपनी संभाल करो। संग तारे कुसंग डुबोए। अगर श्रेष्ठ संग है महान आत्माओं का संघ है, जो सदा स्वचिंतन करने वाली आत्माएं हैं उनका संघ है, तो ये ब्राह्मण जीवन में सदा प्रगति होगी। और अगर किसी ऐसे का संग कर लिया जो व्यर्थ बोलता, व्यर्थ देखता, व्यर्थ सोचता, व्यर्थ बातें करता है, तो मैं समझता हूँ हम कितना भी ज्ञान योग करें लेकिन उसके संग का प्रभाव कभी भी उन्नति करने नहीं देगा। इसलिए संग की संभाल ब्राह्मण जीवन में भी, ब्राह्मण परिवार में भी आपस में होनी चाहिए। मैंने कई बार ये बात सुनाई है, जब मैं पहले बार मधुबन में आया, रहने लगा यहाँ पर, तो दीदी मनमोहिनी दीदी ने मुझे बुला के कहा संग से बच के रहना। मैंने कहा दीदी हम उस संग से बच करके तो आ गए जो खराब संग था, स्कूल कॉलेज का था, वहाँ का संग खराब था, और ये अच्छे संग में बाबा के घर में आए, और यहाँ भी आप कह रही हैं संग से संभाल करना, क्या बात है। तो दीदी कहती है कई बाबा के बाद सेवा करते करते रह जाते हैं, लेकिन बाबा क्या है, परिवार क्या है, यज्ञ क्या है, उसके प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उस पढ़ाई पर अगर ध्यान नहीं, तो केवल सेवा करने वाले के संग में अगर आप जाएंगे तो उसका रंग लग जाएगा, पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई आत्मा का ज्ञान और योग की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर स्वचिंतन करना नहीं जानता, अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला नहीं है, तो उस संग से अपने आप को सेफ रखना। इसलिए कोई भी बात अगर आपको मुरली से लेकर के, परिवार से लेकर के, मधुबन निवासियों से लेकर के कोई नेगेटिव की तरफ आपको आकर्षित करना चाहे, बताना चाहे, तो बाबा कहता प्लीज ऐसे से अपनी संभाल करना। और पांचवी बात ध्यान पर रखनी है, मुझे गुणग्राही बन करके रहना है। हर एक के अंदर विशेषताएं हैं, और बाबा हमेशा कहता है गुण चोर भले बनो, जिसके अंदर गुण है, विशेषताएं हैं, उनकी कॉपी करो, उनको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, हर एक के गुण देखते देखते तुम गुणवान बन जाओगे, लेकिन किसी के गुणों पर प्रभावित नहीं हो जाना। अगर किसी के अंदर कोई गुण है तो ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, वो गुणवान अगर बना है तो बाबा ने उसको बनाया है, हम बाबा को बनाने वाले को भूलकर उस गुणवान व्यक्ति के पीछे न पड़ जाएं। इसलिए विशेषताएं देखना, गुणों को देखना, गुणवान का संग करना अच्छी बात है, हमें गुणवान बनाएगा, लेकिन अगर हम गुणों को देखते देखते उस व्यक्ति विशेष पर प्रभावित हो जाएंगे तो बाबा से दूर हो जाएंगे, मर्यादा है ये। छठी बात एक ध्यान पर रखने की है, मुझे अपने स्वमान में स्वयं रहना है, मुझे कोई मान दे या न दे, ये भी एक बहुत बड़ी मर्यादा के अंदर बात आती है। कई आत्माएं चलते चलते अपने स्वमान को भूल करके दूसरों के मान के पीछे अपना समय बर्बाद करती हैं। ये मुझे नहीं पूछता है, ये मुझे सम्मान नहीं देता, बाबा कहता कोई तुम्हें दे या न दे, मैंने तुमको जो इतना दिया है उसको ध्यान पर रख करके अपने आप को खुद मान दे करके उस नशे में रहो, कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो जाना, छोटी दिल नहीं करना, निराश उदास नहीं होना, इसके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, ये तो इतनी अच्छी सेवाएं करता है, इसका तो इतना नाम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और बाबा जिनको कुछ नहीं जो समझता है उसको क्या कहता है, ये मेरा लास्ट मणके का माला का लास्ट दाना, ये भी पूरे विश्व की आत्माओं से महान है, श्रेष्ठ है। इसलिए जो इस परिवार के अंदर जुड़ गई हैं आत्माएं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान को उन्होंने पहचाना है, उन्होंने बाबा कहा है ऐसे बाबा को, इसलिए अपने ऊंचे स्वमान में रहो, अभिमान में ना आना। कई बार स्वमान में रहते रहते अभिमान अटैक कर देता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, इससे बच करके रहना। और इसके साथ दूसरा शब्द है सम्मानजनक बोल बोलना है। अगर परिवार का प्यार चाहिए, ईश्वरीय स्नेह के बंधन में हम रहना चाहते हैं, तो एक एक ब्राह्मण आत्मा को सम्मानजनक बोल मुख से बोलने हैं। कई बार कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं मैं, कुछ जगह से कंप्लेन आती है कि हमारे सेंटर पर मुरली नहीं मुरला चल जाता है। मैं कहता हूं ये प्रश्न, ये भाषा क्यों यूज कर रहे हो? कोई की कमी है, कोई को शिक्षा देनी है, कोई को सावधानी देनी है, तो मुरली के बीच में देना उसकी दिल को दुखाना है। अगर सीधी बाबा की मुरली सुनाई जाए उसमें सब शिक्षाएं हैं, सब बातें बाबा अपने आप कह रहा है, हमको उसमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है। कटाक्ष के बोल, टोंट के बोल, कमेंट्स के बोल अगर मुरली के बीच में कोई ऐड करता है वो संगठन टूटने लगता है। इसलिए बहुत सम्मानजनक भाषा का प्रयोग हो, एक दूसरे को इतना सत्कार चाहिए, जैसे हमें अगर कोई सत्कार न दे रहा हो, सम्मानजनक बोलना हो बोले तो हो सकता है मेरा भी उमंग खत्म हो जाए। हर एक की आंतरिक इच्छा रहती है मुझे हर एक से सम्मान मिले, भले मांगे या न मांगे। इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज कहता है अपने हर सदस्य को, परिवार के हर मेंबर को हम दिल से सम्मानजनक बोलकर उसके सम्मान को आगे बढ़ाएं। कभी भी हमारे बोल से वो अपने आप को अपमानित महसूस न करे, ये ईश्वरीय परिवार की बहुत बड़ी मर्यादा है। कटाक्ष वाले, टोंट वाले, कमेंट्स वाले या किसी के चलती हुई बातों के बीच में बोल देना, पता नहीं इसका भाव क्या है, किस अर्थ में बोला जा रहा है, उसके बीच में अपनी एडिशन कर देना, ये वास्तव में मर्यादा नहीं है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादा में रहने वाली आत्माएं अपने बोल पर बहुत ध्यान देती हैं। सातवीं बात और सुनाता हूं। कई प्रकार की दुनिया के अंदर आकर्षण हैं। कोई किस रूप में आकर्षित कर लेता है, कोई किस रूप में। प्रकृति भी आकर्षित करती है, वस्तुएं भी आकर्षित करती हैं, व्यक्ति भी आकर्षित करते हैं, मनी भी आकर्षित करती है। कोई भी आकर्षण आत्मा को आकर्षित न करे, ऐसा बनना है इस संगम पर हम सबको कि अगर माया की जाल से बचना है तो आकर्षित नहीं होना। सीता शोक वाटिका में तभी पहुंची जब पहले आकर्षित हुई, मायावी रूप को न पहचान कर सोनी हिरण के पीछे आकर्षित हो गई, ये हिरण बड़ा अच्छा है मुझे चाहिए, और जिद किया उसके बाद कि मुझे ला करके दो। और उसी जिद के कारण आप सबने उसकी कहानी सुनी है, मैं कहानी सुनाऊंगा तो हमारा टॉपिक रह जाएगा, लेकिन सीता का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। बाबा भी हम सबको कहता है बच्चे मायावी आकर्षण दुनिया के अंदर अति की ओर जा रही हैं, बहुत नई नई चीजें साइंस की निकल रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो लेकिन आप उसकी तरफ आकर्षित होकर अपनी मनी को, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना। इसलिए उन आकर्षणों से बच करके रहना है। साथ साथ सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। जो संतुष्ट रहने की कला को जानता है, बाबा की दो मुरलियां पिछले बार चल चुकी हैं, बच्चे संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। खुश नसीब हूं इस स्मृति के आधार से, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। खुश नसीबी का चिंतन करके संतुष्ट रहो और संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। हर ब्राह्मण आत्माएं अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों की स्मृति के आधार से, संपन्नता के आधार से संतुष्ट रहने का अभ्यास करें। मैं सदा संतुष्ट रहूं, माना सदा प्रसन्न रहूं, सबको प्रसन्न करूं, सबसे दुआएं लूं और सबको दुआएं दूं। एक और बात कहना है कि हर स्थान पर जहां भी हम सब रह रहे हैं, एक मंत्र पक्का कर लो, जहां मुझे रहना है वहां मुझे सहन करना है, सहना है। इस स्थान पर रहने से ये बात हो गई, ये हो गया, ये हो गया, कब तक सहन करूंगी करूंगा, कई बहुत छोटे दिल करके सामने आते हैं और इतनी छोटी दिल करते हैं कि ये सहन करना पड़ता, ये सहन करना पड़ता, ये होता। कोई तो हद होनी चाहिए ना सहन करने की, है कोई हद? बाबा कहते हैं बच्चे, जहां स्नेह होता है वहां सहन करना बड़ी बात नहीं लगती। माँ का बच्चे से स्नेह होता है, सब कुछ करते हुए भी कितना प्यार से सेवा करती है, सहन तो बहुत कुछ करना पड़ता ना उसको भी। हम सभी भी जहां भी रह रहे हैं, जिस सेवा के निमित्त हैं, जिस स्थान पर हैं, रह करके मिलन एक दूसरे से संस्कार मिला करके चलें, सहन करना एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है और इस गुण के आधार से हम सहनशाह बन जाएंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे कभी भी घबराओ मत, ये हुआ मेरे साथ ही होता है, ये कब तक ये परीक्षाएं आएंगी, कब तक ये शरीर का हिसाब किताब आएगा। बाबा कहता है कब तक क्यों कर रहे हो, कोई भी छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, बड़े से बड़ी बात भी हो जाए उसको छोटा कर दो। इसलिए अगर छोटी को बड़ा बनाने की आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे, खुश नसीब जीवन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बड़े से बड़ी बात हो जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी है, पार कर लेंगे। बाबा हमारा साथी है, जिसका साथी स्वयं भगवान है उसके लिए आंधी और तूफान क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए सहन करने में डरना और घबराना नहीं है, जो स्थान बाबा ने दिया है उसी स्थान पर हम पहुंचे हैं जहां उन आत्माओं के साथ मेरा कोई पिछला हिसाब किताब है, और जब है तो वहां चुक तू करना है, खुशी खुशी से करो या जबरदस्ती से करो, करना तो पड़ेगा ही। और अगर छोड़ करके जाओगे तो जहां जाओगे वहां भी कुछ होगा, तभी आप जा रहे हो वहां। इसलिए छोड़ने का संकल्प करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट बात और सुना देता हूं, वो दो बातों की है। एक, ध्यान रखना है हमारी लाइफ के अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है, अति हमेशा नुकसान करती है। संतुलन, बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। किसी से अति प्यारे बन गए तो भी ठीक नहीं है और अति न्यारे बन गए तो भी ठीक नहीं है। सेवाओं में बहुत अधिक व्यस्त हो गए, स्व को भूल गए तो भी अमर नहीं रह सकेंगे, और स्व पर ही ध्यान दिया, सेवा नहीं की तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस सिखाया है, स्व और सेवा का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है। ऐसे नहीं व्यवहार में लग गए, परमार्थ कर लेंगे ठीक है, कई हैं इतना नशा चढ़ जाता है दिन रात बस सेंटर पर सेवा करनी है, बाबा की सेवा करनी है, व्यवहार छूट जाता, परिवार भटक जाता, सब परिवार वाले दुखी हो जाते। बाबा कहता है इसको ज्ञान की कमी है, बैलेंस रखना नहीं आता। हर चीज में बैलेंस बहुत बड़ी कला है, और बैलेंस से चलने वाली आत्माएं सदा ब्लिसफुल जीवन का अनुभव करती है, बहुत आनंददायक जीवन व्यतीत कर सकती है। इसलिए संतुलन से चलना है। अति कोई भी चीज की नुकसान करती है। आप नींद अति करोगे तो आलस्य घेरेगा, ऐसे नहीं आप बहुत नींद करेंगे तो सुस्ती भाग जाएगी, और नहीं करेंगे तो भी सुस्ती आएगी, आलस्य आएगा। शरीर कमजोर होगा। अति भोजन करेंगे तो भी आपको बहुत भारी कर देगा, नुकसान कर देगा, और नहीं करेंगे तो भी चल नहीं सकेंगे। इसलिए हर चीज का बैलेंस बाबा ने हम योगियों के लिए बहुत अच्छी मर्यादा बनाकर दी है। और बैलेंस संतुलन के साथ साथ आवश्यक है संयम की। संयम भी बहुत बड़े नियम है, पक्के टाइम पर क्लास में आना ही है, रेस करो कि मैं पहले जा करके। ये संयम बाबा ने बना के दिया है, एक बंधन है हमारे लिए समय का कदर करना। जो रेगुलर और पंचुअल होते हैं उनको बहुत मार्क्स मिलती हैं। इसलिए जो नियम है अगर उनको संयम की रीति से पालन किया जाए तो मैं समझता हूँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति बन सकती है। तो मर्यादाओं को पालन करके इस ब्राह्मण जीवन में हम सब निर्विघ्न स्थिति बना सकें, सदा आगे से आगे बढ़ते रहें, ब्राह्मण सो देव पद को प्राप्त कर सकें, ब्राह्मण सो फरिश्ता बन सकें, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकें, उसके लिए इन कुछ एक बातों को अंडरलाइन करके कल के दिन बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर लें, ये जो कमी है इसको हम छोड़ देंगे। हरेक को मैं समझता हूँ ये दर्पण मिला है, इस दर्पण के सामने अपनी कमजोरियां स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर आलस्य है, अलबेलापन है, किसी भी प्रकार की बहानेबाजी है, कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी है, तो कल बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर ये बेल पत्र चढ़ा करके बाबा से वरदानों की झोली भर लेना। ठीक है, ओम शांति। चलो बाबा के पास, जल्दी उठने की जरूरत नहीं है।
ओम शांति। राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने जो मर्यादाएं बताई। बाबा के सभी बच्चे पालन करते हैं, और कहीं अलबेलापन होगा तो जरूर उसको अंडरलाइन करके पुरुषार्थ करेंगे। कल बाबा से मिलन का दिन है, अभी से ही अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तभी अव्यक्त बाप दादा से वरदानों से झोली भर सकेंगे। सभी बिल्कुल शांति में रहकर अव्यक्त स्थिति बना करके रात को बाबा को याद करके बाबा से गुड नाइट करके सोएंगे, कमरे में आवाज नहीं करेंगे। यहीं से ही अभी से ही मर्यादाओं का पालन शुरू। जो भी भाई बहने अभी उठ करके जा रहे हैं, आज सेवाधारियों की मीटिंग थी इसलिए कुर्सी जो भी टेढ़ी हो उसको थोड़ा ठीक करके जाएंगे। जहाँ जहाँ भाई बहन कुर्सी पर बैठे हुए थे अपनी अपनी कुर्सी को थोड़ा सा ठीक करके फिर प्रस्थान करें। धन्यवाद।